भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरुणिमा वेजिटेरियन है, आप उसके सामने चिकन कैसे रख सकते हैं? हालांकि हैरान तो प्रणाली भी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ आस्तिक के जवाब का इंतजार कर रही थी। और पृथ्वी ने कहा, भाई ये गलत है। प्रणाली ने गुस्से में पृथ्वी और कीर्ति से कहा, तुम दोनों फिर भाई से बहस करने लग गए हो। मैंने कहा ना, ये उन दोनों का आपसी मामला है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करो। प्रणाली की डांट सुनकर पृथ्वी और कीर्ति चुप हो गए और सर झुकाकर अपनी प्लेट को देखने लगे। अरुणिमा की उल्टियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसका पूरा मन कच्चा हो गया था और अब उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। अपना चेहरा साफ करके अरुणिमा वापस हॉल में आती है और वहीं पर एक पिलर से टिककर खड़ी हो जाती है। अरुणिमा अभी भी अपने मन की उबक को शांत नहीं कर पाई थी और आस्तिक ने जब अरुणिमा को देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आस्तिक ने एक नौकरानी को आवाज़ देते हुए कहा, इधर आओ। वो नौकरानी जल्दी से आस्तिक के पास आती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, जी राजा साहब। आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए उस नौकरानी से कहा, आज से रानी साहिबा को तीनों टाइम खाने में सिर्फ चिकन और फिश ही दिया जाना चाहिए। और हाँ, उसमें मसाले बिल्कुल मत डालना, सिर्फ उबला हुआ चिकन और फिश ही दिया जाना चाहिए। और वो अपना खाना खत्म करे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। एक बार खाना छोड़ने की कीमत है, तुम्हारे ऊपर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। आस्तिक की बात सुनकर सब हैरान होते हैं और वो नौकरानी हैरानी से आस्तिक को देखती है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, रहम राजा साहब, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। प्रणाली ने उस नौकरानी को देखते हुए शक्ति से कहा, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, भाई बस इतना चाहते हैं कि अरुणिमा अपना खाना खत्म करे। आस्तिक की नज़र अभी भी अरुणिमा के ऊपर बनी हुई थी। अरुणिमा ने आस्तिक की बात सुनी और हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब अगर अरुणिमा इस खाने को नहीं खाती है तो इसकी सजा उस नौकरानी को मिलेगी। अरुणिमा की आंखों से आंसू आ गए थे। वो धीरे कदमों से चलकर वापस अपनी उस जगह पर आती है जहाँ पर एक बाउल में चिकन रखा हुआ था। अरुणिमा का मन फिर से उल्टी करने का कर रहा था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी जगह वो किसी और को सजा नहीं दे सकती थी। अरुणिमा धीरे से वहां बैठती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर धीरे से चिकन का एक पीस उठाती है। आस्तिक की नज़र अरुणिमा के ऊपर बनी हुई थी। सभी लोग दयाभाव से अरुणिमा को देख रहे थे, बस पृथ्वी ही था जिसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। अरुणिमा की आंखों से आंसू तेज हो गए थे, पर उसने रोते हुए अपने नाक को बंद किया और दूसरे हाथ से उस चिकन के पीस को अपने मुंह में डाल लिया। अरुणिमा से ये खाया भी नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से पानी उठाकर एक सांस में पी लिया। अरुणिमा मुंह नीचे करके रोने लगी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि कोई उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि कीर्ति की आंखों से भी आंसू आ निकले थे और उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई। आस्तिक रोज रोज इन सवालों का क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने कीर्ति को देखते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी भाभी के साथ कुछ गलत करूंगा? अरे जरा देखो अपनी भाभी को, कितनी कमजोर है वो, कितनी दुबली पतली है। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी सेहत बन जाए। अरे जब वो सेहतमंद रहेगी तभी तो जाकर राज्य का कार्यभार संभाल पाएगी। उसकी खुद की तबीयत खराब रहेगी तो वो कैसे रियासत संभालेगी? पृथ्वी ने आस्तिक को देखकर कहा, लेकिन भाई ये कोई तरीका नहीं होता है किसी की सेहत बनाने का। हेल्दी बनने के और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं उसमें नॉनवेज ही शामिल किया जाए। आस्तिक ने एक मुस्कान के साथ पृथ्वी को देखा और कहा, मेरी पत्नी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये शायद मैं बेहतर समझ सकता हूँ। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। पृथ्वी वहाँ से उठता है और कहता है, मेरा हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पृथ्वी वहाँ से जाने के लिए बाहर की तरफ मुड़ता है, तभी एक सेवक जल्दी से पृथ्वी का ब्रीफकेस और उसके डॉक्टर वाला कोट लेकर आता है। पृथ्वी सेवक के हाथ से ये सामान ले ही रहा था कि तभी आस्तिक पृथ्वी को देखते हुए कहता है, शाम को अस्पताल से आते वक्त अपनी भाभी के लिए बर्थ कंट्रोल्स का इंजेक्शन लेकर आना। पृथ्वी हैरानी से झटके के साथ घूमता है और अपनी आंखें बड़ी किए हुए आस्तिक को देखने लगता है। यहाँ तक कि प्रणाली और कीर्ति भी हैरानी से आस्तिक को देखते हैं। अरुणिमा के लिए ये मौत के बराबर था। उसके लिए इतना अपमान सहना ही मुश्किल हो रहा था कि अब उसे ये सुनना पड़ रहा है कि उसे बर्थ कंट्रोल करवाना होगा। सबको इस तरीके से हैरानी से देखता पाकर आस्तिक ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है, मैं नहीं चाहता हूँ ये प्रेग्नेंट हो। प्रणाली और कीर्ति एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं और धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं। पर पृथ्वी आस्तिक को देखते हुए कहता है, भाई आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आस्तिक ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान रखते हुए कहा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। कल तक तो तुम लोगों को मेरी सारी बातें एक बार में ही समझ आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम लोगों को मुझे हर चीज के बारे में सफाई देनी पड़ रही है? प्रणाली ने कहा, भाई आपकी बातें कल तक बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन आज आप बहुत उलझी हुई बातें कर रहे हैं। अरुणिमा को बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन देने का क्या मतलब है आपका? अगर अरुणिमा प्रेग्नेंट होती है तो रियासत को उसका वारिस मिलेगा। लेकिन आस्तिक ने शक्ति से प्रणाली को देखते हुए कहा, वो इस लायक नहीं है। अरुणिमा हक्की बक्की होकर आस्तिक को देखती रह जाती है। यहाँ तक कि सब लोग आस्तिक को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। आस्तिक ने अपनी बातों को संभाला और कहा, मेरा कहने का मतलब है वो अभी इस लायक नहीं है। उसकी अभी उम्र ही क्या है, और वैसे भी अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चे की प्लानिंग कौन करता है? जहाँ तक मुझे लगता है अरुणिमा ने भी इतनी जल्दी बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा। क्यों, है ना अरुणिमा? ये कहने के साथ आस्तिक अरुणिमा को घूर कर देखता है। आस्तिक की नजरों की तपिश पाते ही अरुणिमा जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। पृथ्वी कुछ नहीं कहता और अपना ब्रीफकेस लेकर घर से निकल जाता है। नाश्ता खत्म होने के बाद कीर्ति भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। और प्रणाली अपने फैशन हाउस के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद आस्तिक सोफे पर बैठा हुआ था और अरुणिमा उसके सामने खड़ी थी। उसके अगल बगल में दो तीन सेवक सेविकाएं थे। आस्तिक अरुणिमा को देखता है और कहता है, आज से तुम मेरा सारा काम करोगी, वो काम जो इस घर में ये लोग करते हैं। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है। नहीं, उसे इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई थी कि उसे घर का काम करने के लिए कहा जा रहा था, बल्कि हैरानी उसे इस बात की हुई थी कि उसकी तुलना नौकरों से की जा रही थी।